पृष्ठ संख्या 14। कभी कभी वह धार्मिक व्यवस्था की रूढ़ियों को अपने प्रश्नों के कटघरे में लाकर सवाल दर सवाल करते हुए उसके अंतर विरोधों को उजागर करते हैं। जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुलुक के ही केरा, तीर्थ मूरत राम निवासी बाहर करे को हेरा। कबीर के प्रश्न उच्च वर्ग और उच्च वर्ण की नैतिक मान्यताओं को चुनौती देने वाले, उनकी बखिया उधेड़ने वाले हैं। वह मान्यताएं चाहे कबीर के युग की हों या आज की, साथ ही वह नई नैतिक चेतना की आवश्यकता का बोध पैदा करने वाले हैं। उन प्रश्नों की कौंध लोगों के दिमाग पर छाए भ्रामक विचारों की धुंध को छाटने वाली है। कबीर के प्रश्न जितने सहज और बेलाग हैं, उतने ही तिलमिला देने वाले हैं। वह कभी कभी सुकरात की तरह अज्ञानी बनकर प्रश्न करते हैं और बड़े बड़े पंडितों तथा मुल्लाओं के ज्ञान की पोल खोल देते हैं। कबीर की प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति व्यंग्य को विशिष्ट सामाजिक कला बनाती है। वह आज भी साधारण जनता को सत्ता और धर्म के ठेकेदारों से परेशान करने वाले प्रश्न पूछने की प्रेरणा देती है। कबीर की कविता में प्रश्न करने की यह प्रवृत्ति अपने समय के समाज को नए ढंग से देखने और बदलने की इच्छा से जुड़ी हुई है। कबीर की काव्य दृष्टि कि इस विशेषता के कारण उनकी कविता भक्तिकाल के अन्य कवियों की कविता से अपनी अलग पहचान बनाती है। उदाहरण के लिए कबीर और तुलसी की कविता में एक अंतर यह है कि कबीर की कविता प्रश्न करने वाली कविता है, तो तुलसी की कविता उत्तर देने वाली कविता है। कबीर की मूलगामी आलोचना दृष्टि केवल प्रश्न करने तक सीमित नहीं है, क्योंकि वह केवल असहमति और विरोध के कवि नहीं हैं। उनकी दृष्टि समाज में मनुष्यत्व की भावना विकसित करने के लक्ष्य पर रहती है। प्रश्न करने की पद्धति उस लक्ष्य का साधन है। कबीर समाज में मनुष्यत्व के विकास के लिए हृदय के धर्म अर्थात मानवीय भावों को लोकधर्म बनाने पर जोर देते हैं। इसलिए वे एक ओर ईर्ष्या, क्रूरता, कामुकता, कपट, अहंकार आदि की आलोचना करते हैं, तो दूसरी ओर प्रेम, करुणा, दया, उदारता, अहिंसा और समता का विकास चाहते हैं। कबीर की इच्छा है कि इन मानवीय भावों और गुणों के अनुसार मनुष्य स्वयं आचरण करे, ना कि उसके लिए कोई अवतारी राम या कृष्ण। वे अवतारवाद की आलोचना करते हैं, क्योंकि अवतारवाद मनुष्य की निरीहता और परालंबन की मांग करता है। कबीर मनुष्य की स्वतंत्रता के कवि हैं। वह चाहते हैं कि मनुष्य अपनी आस्था, विश्वास और क्षमता के अनुसार अपना जीवन जिए या भक्ति करे। वह मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली हर बात का विरोध करते हैं, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक। वह गौतम बुद्ध की तरह कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो। पृष्ठ संख्या 15। मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए खतरा केवल शास्त्रीय धर्म का भय ही नहीं होता, लोक धर्म का भ्रम भी होता है। कबीर शास्त्रीय धर्म की बार बार आलोचना करते हैं। वह चाहे वेद पुराण के सहारे चलने वाला हो या कुरान के सहारे, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि समाज में लोक धर्म के नाम पर वह भ्रम जाल भी फैला होता है जिसे लोकाचार कहा जाता है। वह कई बार लोक मत में व्याप्त शास्त्रोक्त व्यवहार होता है। कबीर का विवेक इस छद्म को पहचानता है, इसलिए वह कहते हैं, ताथई कहिए लोकाचार, वेद कतेब कथय व्यवहार। कबीर लोग जीवन में प्रचलित ऐसे अंधविश्वासों का भी खंडन करते हैं जो मनुष्य के आत्मविश्वास का नाश करते हैं। उनके समय में यह अंधविश्वास प्रचलित था कि जो काशी में मरता है वह मोक्ष पाता है, लेकिन जो मगहर में मरता है वह अगले जन्म में गधा होता है। इस अंधविश्वास को मानते का अर्थ था एक तो भक्ति का निरादर और दूसरे आत्मविश्वास का अंत। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में इस अंधविश्वास का खंडन किया है। लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामहि कौन निहोरा रे। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परय जिन कोई, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सति होई। कबीर ने केवल कविता में ही इस अंधविश्वास का खंडन नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन व्यवहार से भी इसका खंडन किया था। वे जीवन भर काशी में रहे, लेकिन अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं प्राण त्यागे। कथनी और करनी की इस दुर्लभ एकता के कारण ही कबीर अपने युग के मार्गदर्शक बने और आज भी वे मानवीय विवेक के प्रतीक बने हुए हैं। कबीर की उदात्त भक्ति भावना, मूलगामी दार्शनिक दृष्टि और प्रखर सामाजिक चेतना के महत्व की सबसे पहले पहचान करते हुए नाभादास ने भक्तमाल में ठीक ही लिखा था, भक्ति विमुख जो धर्म सु सब अधर्म करि गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबती साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। पृष्ठ संख्या 16। कबीर की भक्ति भावना नैतिक चेतना और सामाजिक विवेक में बौद्धों, सिद्धों, नाथों और सूफियों की विचारधाराएं आकर मिलती हैं, तो उससे निर्गुण और सगुण भक्ति की अनेक धाराएं निकलती भी हैं। कबीर को सूफी कवि जैसी आदर के साथ याद करते हैं और रविदास, दादू धन्ना आदि उनका महत्व स्वीकार करते हैं। मीराबाई की भक्ति भावना और कविता पर कबीर का गहरा प्रभाव है। इन सबके साथ ही उत्तर भारत की संत काव्य परंपरा के सबसे पुरानी, प्रामाणिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के 229 पद और 243 शाखियाँ संग्रहित हैं। कबीर भक्ति काल के संभवतः अकेले ऐसे संत कवि हैं जिन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध सभी अपना मानते हैं। यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कबीर को मुक्तिदूत और भारत पथिक कहा था और उन्हें राजा राममोहन राय का अग्रपथिक घोषित किया था। कबीर केवल अपने युग की नई चेतना के जागरण के प्रेरणा स्रोत ही न थे, वे आधुनिक भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी हैं। यह कहना गलत ना होगा कि आधुनिक भारतीय नवजागरण की चिंतन धारा में जो कुछ देशज, उदार, अग्रगामी और जनोन्मुख है, उसके निर्माण में कबीर की कविता की महत्वपूर्ण भूमिका है। कबीर एक महान संत और समाज सुधारक ही नहीं, अद्वितीय कवि भी हैं। भारत में तीन प्रकार के कवि हुए, एक वे जिन्हें स्रष्टा कवि कहा जा सकता है, उन्होंने अपना पूरा संसार स्वयं रचा है, ऐसे कवि हैं वाल्मीकि और व्यास। दूसरे प्रकार के वे कवि हैं जिन्होंने स्रष्टा कवियों के काव्य संसार से अपनी रचना की मूल सामग्री लेकर उसे नई कला के साथ नए रूप में रचा है, उन्हें कलाकार कवि कहना उचित होगा। ऐसे कवि हैं कालिदास, तुलसीदास और सूरदास। इन दोनों से अलग एक ऐसा कवि भी है जो न वाल्मीकि और व्यास की तरह स्रष्टा है और न कालिदास तथा सूरदास की तरह कलाकार। वह अपने समय के सच को देखता है और उनकी भावी संभावनाओं को भी, और उसी देखे हुए की कविता लिखता है। उसे दृष्टा कवि कहा जा सकता है। ऐसे कवि हैं कबीर। भारतीय कविता के इतिहास में अपने ढंग का यह पहला कवि और संभवतः अकेला ऐसा कवि है जो कवि होने और बनने की पहले से बनी बनाई किसी भी शर्त को नहीं मानता। वह कागज लेखी पर विश्वास नहीं करता और अपने बारे में जानबूझकर यह घोषणा करता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यही नहीं, वह मानता है कि पढ़ने लिखने से मानवोचित दृष्टि आती नहीं बल्कि चली जाती है। पढ़ी पढ़ी के पाथर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लागी न एको छींट। पृष्ठ संख्या 17। यह अपने समय के पोथीनिष्ठ पंडितों और मुल्लाओं के व्यक्तित्व के बारे में कबीर की प्रतिक्रिया है। कबीर ने अपने समय को भारतीय समाज में धर्मों, जातियों और संप्रदायों के बीच फैले ऊंच नीच के भेदभाव और उससे उपजे द्वेष और घृणा के भीषण सच को देखा था। घर में रहकर या वन में जाकर नहीं, बाजार में खड़े होकर उस सच का साक्षात्कार किया था और उसकी भयावह संभावनाओं का भी, इसलिए वह दुखी भी थे। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। वह इस बात से भी दुखी थे कि कोई उनके अनुभूत सच को सुनना नहीं चाहता। लोग सच सुनकर मारने दौड़ते हैं और झूठ पर विश्वास करते हैं। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। ऐसा दुख उसे ही होता है जो अपने समय और समाज के बारे में सजग होता है। उसी सजगता से उपजी है कबीर की कविता, जो कालजीवी है और कालजयी भी। वह अपने समय में जितनी सार्थक थी उतनी आज भी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी कविता को चिर आधुनिक ठीक ही कहा है। कबीर ने जिस भीषण सच और उसकी भयावह संभावनाओं का साक्षात्कार किया था, उससे भारतीय समाज को बचाने के लिए वे एक ऐसे लोक धर्म का विकास चाहते थे जिसका आधार प्रेम हो, क्योंकि प्रेम ऐसा भाव है जो मनुष्य को हर प्रकार के भेदभाव और विधि निषेध से स्वतंत्र करता है। वह मनुष्य की मनुष्यता का पोषक है और स्वाधीनता का रक्षक भाव है। इसीलिए कबीर की कविता में प्रेम का अपार विस्तार है और असीम महत्व। सच पूछिए तो कबीर मूलतः प्रेम के ही कवि हैं। उनकी कविता में प्रेम लौकिक है और आध्यात्मिक भी, सामाजिक मूल्य है और व्यक्तिगत अनुभव भी। वह सामाजिक समता का प्रेरक है और व्यक्ति की नैतिक चेतना का मार्गदर्शक भी। कबीर की कविता में प्रेम की अनुभूति जब भारतीय स्त्री के पारिवारिक परिवेश और उसमें पलने वाले मानवीय संबंधों की भाषा में व्यक्त होती है, तब वह अधिक मूर्त और संवेद्य होती है। कबीर की प्रेमानुभूति कहीं कहीं रहस्यमयी लगती है, लेकिन लौकिक जीवन में भी प्रेम की अनुभूति पूरी तरह रहस्य रहित नहीं होती। भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा की कविता भारत की श्रमजीवी जनता के जीवन की वास्तविकताओं और आकांक्षाओं की कविता है, जिसके प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं कबीर। वह बार बार कहते हैं मैं जुलाहा, उनकी कविता का ताना बाना भी कहता है कि वह एक बुनकर की कविता है। उसका पूरा पृष्ठ संख्या 18, काव्य लोक एक जुलाहे के जीवन यथार्थ के अनुभवों से बुना हुआ है। यहाँ तक कि कबीर की भक्ति भावना के आध्यात्म लोक में भी उन्हीं अनुभवों की बुनत है। उलट जात कुल दोवो विसारी, सुन्न सहज मही बुनत हमारी, हमरा झगरा रहा न कोवो, पंडित मुल्ला छाणे दो, बुनि बुनि आप पहिराओ, जहाँ नहीं आप तहाँ वह गाँव, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछ ना लिया। कबीर के जीवन से उनकी भक्ति के अंतरंग संबंध को पहचान कर ही जायसी ने उनके बारे में लिखा है, प्रेम तंतु नित ताना तनई, जप तप साधि सैकरा भरई। कबीर प्रत्येक लौकिक और अलौकिक वस्तु को बुनकर की नज़र से देखते हैं। उनके लिए ईश्वर भी एक बुनकर है और उसकी यह दुनिया तथा मानव काया झीनी झीनी बीनी चदरिया है। कबीर अपने जीवन के अनुभवों का ताना तान कर उसमें भक्ति का बाना बुनते हैं। कबीर के यहाँ जैसे जीवन के कर्म से उनके धर्म का जीवन अलग नहीं है, वैसे ही उनके कवि कर्म और जीवन कर्म में अपूर्व एकता है। कबीर की जीवन जीने की कला ही उनकी कविता की कला बन गई है। कबीर की कविता ऐसी विशिष्ट है कि वह शिष्ट काव्य और लोक काव्य के भेद को मिटाती है। वह वाचिक संस्कृति की देन है और लोक प्रतिभा की सृजनशीलता का विलक्षण उदाहरण। वह लोक जीवन के अनुभवों से रची हुई है, इसीलिए जनता के जीवन और स्मृति में बसी हुई है। दुनिया का प्रत्येक कवि चाहता है कि उसकी कविता मुट्ठी भर पाठकों तक सीमित न रहकर व्यापक जनजीवन में रच बस जाए, लेकिन ऐसा सौभाग्य कम ही कवियों को प्राप्त होता है। कबीर उन्हीं थोड़े से सौभाग्यशाली कवियों में हैं। उनकी कविता की असंख्य पंक्तियाँ लोकोक्तियाँ बनकर लोक जीवन में प्रचलित हैं। कबीर की कविता को जनता केवल पढ़ती और सुनती ही नहीं, उसे जीती भी है। उनकी कविता की एक विशेषता यह है कि वह साधारण जनता को भी कवि बनाती है। इसीलिए कबीर के नाम से असंख्य ऐसे पद और साखियाँ जनजीवन में मिलती हैं जो कबीर की नहीं जनता की रची हुई हैं। कबीर की कविता की अपार लोकप्रियता का एक कारण उसकी बोलचाल और जीवन व्यवहार की भाषा है। उसकी बनावट ऐसी है कि वह हिंदू और मुसलमान, साधु और गृहस्थ, नागर और देहाती, पढ़े लिखे और अनपढ़, स्त्री और पुरुष सबको अपनी भाषा लगती है, वह जितनी सहज है उतनी ही अर्थपूर्ण। भक्ति आंदोलन संस्कृत के वर्चस्व से मातृभाषाओं की मुक्ति का आंदोलन भी है। पृष्ठ संख्या 19। भक्ति आंदोलन के समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों की मातृभाषाएं संस्कृत के सांस्कृतिक दबाव से उत्पन्न हुई, उनकी सृजनशीलता उन्मुक्त हुई और उनमें काव्य रचना का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के जिन जिन कवियों ने अपनी मातृभाषाओं की रचनाशीलता का मार्ग बनाया, उनमें कबीर का विशेष महत्व है। वह देववाणी कही जाने वाली संस्कृत के सामाजिक आधार, सांस्कृतिक प्रयोजन और विचारधारात्मक प्रभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत की संस्कृति से जनभाषा की संस्कृति का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा था, संस्कृत है कूप जल, भाषा वहता नीर। कबीर के समय में संभवतः ऐसे लोगों की भरमार थी जो संस्कृत पढ़ लेने के कारण स्वयं को ज्ञानी समझते थे, लेकिन उनमें मानवोचित गुणों का अभाव था। कबीर ज्ञान की भाषा से प्रेम की भाषा को बेहतर मानते थे, इसीलिए उन्होंने संस्कृत पढ़कर ज्ञानी होने का दंभ पालने वालों पर व्यंग्य करते हुए कहा था, संस्कृत भाषा पढ़ लीन्हा, ज्ञानी लोक कहोरी, आशा तृष्णा में बही गयो सजनी, काम के ताप सहोरी, मान मनी की मटकी सिर पर नाहक बोझ मरोरी, मटकी पटक मिलो पीतम से, साहेब कबीर कहोरी। इस तरह कबीर के जनजीवन, उसकी संस्कृति, भाषा और कविता को संस्कृत के आतंक से मुक्त किया। भक्ति आंदोलन के काल में हिंदी क्षेत्र के विभिन्न मातृभाषाओं में व्यवस्थित रूप से काव्य रचना प्रारंभ हुई। मिथिला के विद्यापति ने मैथिली में पदावली की रचना की तो राजस्थान की मीराबाई ने राजस्थानी में, अवध के जायसी और तुलसी ने अवधी में कविता लिखी तो ब्रज के सूरदास ने ब्रज भाषा में। कबीर की मातृभाषा भोजपुरी थी, उनका जन्म काशी में हुआ था और देहांत मगहर में, ये दोनों भोजपुरी क्षेत्र हैं, इसलिए कबीर की कविता मूलतः भोजपुरी की कविता है। उन्होंने स्वयं अपनी बोली मातृभाषा के बारे में कहा है, बोली हमारी पूरबी हमको लखए न कोय, हमको तो सोई लखए जो पूरब का होए। कबीर के इस कथन के बावजूद उनकी भाषा के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए गए हैं, उसे खिचड़ी, सधुक्कड़ी, बिहारी आदि कहा गया है। यह ठीक है कि कबीर की कविता के जो संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनकी भाषा में भोजपुरी के साथ साथ अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी आदि के रूप और प्रभाव मिलते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि कबीर रमता योगी थे। रमता योगी बहते पानी की तरह ग्रहणशील होता है। कबीर भ्रमण करते हुए जहाँ जहाँ गए होंगे वहाँ की बोली बानी से कुछ न कुछ जरूर ग्रहण किया होगा। पृष्ठ संख्या 20, जिससे उनकी कविता की भाषा प्रभावित हुई होगी। दूसरी बात यह है कि कबीर कविता लिखते नहीं, रचते, कहते और गाते थे। उनकी कविता मौखिक रूप में दूर दूर तक गई है। वह जहाँ भी गई है वहाँ की बोली का रंग उस पर चढ़ा है। कबीर की काव्य भाषा के वर्तमान रूप का तीसरा कारण उनकी कविताओं को संकलित करने, लिखित रूप देने और पाठ बनाने की प्रक्रियाओं और परंपराओं से जुड़ा है। उनकी कविता के अधिकांश संग्रहों और पाठों की पांडुलिपियाँ राजस्थान और पंजाब में मिली हैं, इसीलिए उनमें राजस्थानी और पंजाबी के प्रभावों की भरमार है। गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित कबीर के पदों और साखियों में पंजाबीपन इसी तरह आया है। कबीर की काव्य भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों और अन्य प्रभावों के होने का एक और कारण है। भोजपुरी में एक कहावत प्रचलित है, थोर कहले कबीर दास, आ बहुल कहले कबीर हा। कबीर दास ने थोड़ा कहा और कबीर पंथियों ने बहुत कहा। तात्पर्य यह कि कबीर के नाम से जो रचनाएं मिलती हैं उनमें से बहुत सारी कबीर की नहीं, कबीर पंथियों की लिखी हुई हैं। ऐसी रचनाओं में लिखने वालों की भाषा के शब्द और अन्य प्रभावों का मिलना स्वाभाविक है। इन सब के बावजूद यह सच्चाई है कि कबीर की कविता की भाषा मुख्यतः भोजपुरी है। उनकी साखियों की भाषा पर पश्चिमी हिंदी के प्रभाव हैं, लेकिन पदावली की भाषा सामान्यतः भोजपुरी ही है। कबीर केवल अपने युग की ही चिंता के कवि नहीं हैं, वे भारत के अतीत की तेजस्वी ज्ञानधारा और भविष्य की संभावनाओं के भी कवि हैं। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय साहित्य और संस्कृति की अग्रगामी परंपरा में कबीर तत्व अनेक रूपों में विद्यमान है। वह एक ओर कबीर संगीत की उस परंपरा में है जिससे साधारण जनता हजार कठिनाइयों के बीच जीने की शक्ति पाती है, तो दूसरी ओर वह साहित्य में अपने समय की विसंगतियों को पहचानने और साधारण जनता के दुख दर्द से हमदर्दी अनुभव करने की दृष्टि देता है। आज की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को देखकर भले ही हमें यह लगता है कि हम उत्तर कबीर युग में जी रहे हैं, लेकिन अगर हम कबीर की कविता को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट होगा कि उसमें आज के हमारे समय और समाज के अनेक जटिल सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नों की पहचान के संकेत हैं और उनके उत्तर की संभावनाएं भी।